जयधवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिय परमत्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विज्जैः जासन्तु आभयवदी वसियौ सुयदेवया मज्जम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजोगो वभावियो सम्मम् आवहैनान सिद्धिम् नानफलम् चाविनिर्वाणम् तो सुवदेवय मिनमो दिक्कुत्तोपणमियून भक्तिये गोच्छामि जहासुत्तम् चारित्तमोहसखवणवीम्।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाउडर चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। सोलहवीं पुस्तक उसमें हम चारित्र मोक्ष अपना नाम का अर्थाधिकार देख रहे हैं और आए हैं पृष्ठ संख्या 134 पर 134। शीन मोह के बाद जो 13वां गुणस्थान प्रकट होता है केवल ज्ञानी का संयोग केवली गुणस्थान, तो उसमें हम देख रहे थे कि नौ क्षायिक लब्धि प्रकट होती है। कौन कौन सी याद है ना? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक शब्द लगाना जिसको हम अनंत ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, उसी को यहाँ क्षायिक की अपेक्षा क्षायिक ज्ञान कह दिया। तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र और पांचवा कौन से पांच? दान, लाभ, भोग और वीर। तो यहाँ तो ये ज्ञान की बात आई थी, वो कैसे असहाय है वगैरह वगैरह हमने देखा था ना, युगपत होता है, क्रम रहित, करण रहित और व्यवधान रहित, ऐसे तीन शब्द आए थे। एक बहुत सुंदर यानी महत्व की बात उन्होंने यहाँ बताई थी कि परमार्थ से लिविंग रियलिटी सभी प्रमेय राशि के अनंत गुणा इसके अविभाग प्रतीक्ष है, यानी सभी जो ज्ञेय पदार्थ है वो उसके अनंतवे भाग में जाने जाते, ये यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो कहते हैं ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते तो भी वो केवल ज्ञान वो जान जाता। तो उसके बाद अनंत वीर्य की भी बात आई थी, तो ये जो उपयोग है इसके अनंत गेयों को जानने रूप, फिर भी हाँ 304 नंबर का 131 रूप पृष्ठ पर इसके
ये जो लिखा गया
ये वीरसेन आचार्य का ग्रंथ, स्वयं जो वीरसेन स्वामी ये कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई विशेषार्थ नहीं है। क्या मैं विशेषार्थ तो आज के समझो कुछ साल पहले के पंडितों ने लिखा है, परंतु ये मूल पुस्तक में है, जयधवला पुस्तक की ये अंश है और मूल प्राकृत में लिखे सकल प्रमेय राशे है अनंत गुणानाम आगम समधिगम्यानाम उपलम्भात, यानी आगम का भी आधार है और ये सब ये दोनों की बात है। यानी जो केवल ज्ञान का जो सामर्थ्य है वो आगम के द्वारा भी जानने में आता है और वो कैसा है तो समय सकल प्रमेय राशि के अनंत गुण रूप है। तो यानी ये केवल कल्पना नहीं है, उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद है, ये कोई कल्पना नहीं है,
या सर्वज्ञ का महात्म्य बनाने के लिए बताने के लिए ऐसे कोई अतिशयोक्ति से बताया नहीं गया।
वो कौन से पेज?
ये 131 पेज पर 131 हमने पढ़ा था ना कल इसको विस्तार से। अब ये जो जान रहे हैं तो ये जान ये उपयोग रूप जो कार्य हुआ वो उसी में लगा रखना, इसको बल चाहिए। जैसे हम देखते मुनिराज को भी सातवें में है वो हम कहेंगे शुद्ध उपयोग में, फिर भी कितने समय तक टिकते हैं तो अंतर्मोह, फिर छठे में आते हैं। अब ये इतना सारा उपयोग रूप जान रहे स्व पर सबको, तो कहते वो टिकाए रखना उसमें, और खेद रहित यानी खेद का अर्थ होता है जैसे हम क्या कहते थकान हो जाती है हमको, बहुत चले तो हमें थक जाते हैं, हमें तो इसका भी बोझ लगता है क्यों पढ़ने का करने नहीं हो पा। हाँ यानी पढ़ते पढ़ते हम थक भी जाते हैं ना, तो कहते कि इतना सारा अनंतानंत गेहूं को जानते हुए भी उसमें खेद उत्पन्न नहीं रहता, उसी में टिके रहते हैं, वो तो वीर्य गुण का कार्य। ये बात बताई कल, उसकी बात उन्होंने विशेष रूप से सिद्ध की थी। अप्रतिहत सामर्थ्य वाला, अप्रति उसे कोई रुकावट नहीं, ऐसा अनंत अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गया, और ये जो जान रहे उसी में वो टिका रहे, उसी वो अनंत काल तक वो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान चलता रहे, उसमें वो अनंत वीर्य लगा है उसको, उसको बलाधान कहा। बलाधान यानी उसमें जो पावर है उसकी निरंतर उपयोग रूप, यानी केवल ज्ञान तो सभी पूरा ही पूरा उपयोग रूप है, उसमें कुछ लब्धर उपयोग रूप की बात नहीं है, और ना ही उपयोग यहां से वहां हटने की कुछ बात है। ज्ञान और दर्शन दोनों का उपयोग रूप कार्य एट ए टाइम चल रहा है, क्रम नहीं है उसमें, और वो कहते निरंतर चल रहा है, तो ये निरंतर उपयोग वृत्ति जो है उसमें बल कहां से आया है, तो ये अनंत वीर्य से आया, आत्मा का ही अपना बल है उसमें, मैंने तो उसको वीर्य नाम दिया। इसलिए उनकी जो शक्तियां जो प्रकट हुई है वो उसका अवस्थान यानी उसके कंटिन्यूस स्टेडीली वैसे स्टेजेस में रहते हैं। तो अभी हम आए हैं 134 पृष्ठ पर। अब 309 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, चार नंबर की लाइन। अनंत वीर्य को उपलक्षण करके, उपलक्षण करके ने फॉर एग्जाम्पल बताते, हम एक का एक की बात बता दिए तो वही अन्यत्र भी लागू होती है, तो उसको कहेंगे उपलक्षण। पूरे अंतराय कर्म के क्षय से, पांचों है ना अंतराय कर्म, पांचों ही अंतराय जो है उसका क्षय हो गया है, तो वीर्य पर ये घटित करके बताया है। तो कहते पूरे अंतराय कर्म के क्षय से अनंत दान अनंत लाभ अनंत भोग और अनंत उपभोग रूप लब्धियां उत्पन्न हुई है, उसको लब्धि कहते हैं, क्योंकि अनंत वीर्य के समान उन लब्धियों की उत्पत्ति के प्रति कोई विशेषता नहीं है, परंतु वे लब्धियां समस्त प्राणी विषयक अभयदान की सामर्थ्य के कारण तीनों लोकों के अधिपत्व का संपादन करने से तथा प्रयोजन के रहते हुए स्वाधीन अशेष अशेष यानी कुछ बाकी रखे बिना भोगोपभोग संबंधी वस्तुओं का संपादन होने से उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्या क्या कहना चाहते हैं? ये सारी लब्धियां हैं जो है उपयोग सहित ही है,
समस्त प्राणी से अभयदान के सामर्थ्य के कारण।
अरे दान में क्या लगना, तो समस्त प्राणी विषय का अभयदान तीनों लोकों के अधिपतित्व अधिपतित्व ने उसका स्वामित्व हो गया, तो वो लाभ में लिया तथा प्रयोजन के रहते हुए शेष स्वाधीन अशेष भोगोपभोग यानी भोग और उपभोग दोनों लिया, वस्तुओं का संपादन होने से उपयोग सहित ही है। अब ये सब आत्मा पर ही घटित करना है, आत्मा को ये जो बाह्य चीजों का, हमने आपको पैसे का दान दिया, उसने आहार दान दिया, उसकी बात नहीं है ये, ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य भी जीव के ही गुण है। जैसे वीर्य नाम का गुण है वैसे ये भी गुण है। और अपने को ही सब देता है ना, वो दूसरे को कौन क्या दे सकता है। तो अपने अनंत सुख का दान है, अपनी उसका लाभ होता है, अपनी उसका भोग है, उसी का उपभोग है,
ऐसा कुछ होता है।
जैसे हमने ज्ञान की बात है ना, वीर्य उसमें बल देता है, तो ऐसे ये सभी। और उन्होंने अन्य प्राणियों के बारे में अभय दान, सर्वोत्कृष्ट अभय दान इनके द्वारा होता है, इस तरह से गठित किया। और अभी पूर्ण रूप से पूर्ण वितरागी भी हुए हैं, और अभी कैसे हुए हैं, अरिहंत भगवान हुए तो बिल्कुल वहां तो कोई हिंसा ही नहीं उनकी, बिल्कुल तो सभी को अभय दान दिया उन्होंने। लौकिक अपेक्षा से बताए, वही तो उपचार से बताए उन्होंने। बताया ना पहले तो ये आत्मा के गुण है, और आत्मा ही अपने को सुख देता है, अपना ही उसका लाभ होता है, उसी का भोग होता है, उसी का उपभोग होता है। इसलिए पहले ही दो प्रकार के मोहनीय कर्म के क्षय से, ये दो प्रकार के मोहनीय कौन से कर्म है तेजल? दो प्रकार के मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, मोहनीय शब्द लगाया था, ज्ञानावरण मालूम है, दर्शनावरण मालूम है। मोहनीय के दो भेद हैं, सम्यक तो होता है तो किसका नाश होने से सम्यक तो होता है? हाँ, तो मिथ्या तो कौन सा भेद है? मोहनीय, उसके कैसा मोहनीय कहते हैं याद है उसको? मैं दर्शन मोहनीय, और दूसरा चारित्र मोहनीय है ना। तो इसलिए पहले दोनों प्रकार के मोहनीय कर्म के क्षय से जिसने आत्यंतिक समय दर्शन, आत्यंतिक यानी सर्वोत्कृष्ट, और सम्यक चारित्र चाहिए, चरित्र हुआ, चारित्र की शुद्धि को प्राप्त किया है। एक एक कर्म के क्षय से क्या क्या होता है उसकी बात करें यहाँ पर, तो दर्शन मोहनी के क्षय से सम्यक दर्शन हुआ है, क्षय की बात। वैसे तो उपशम क्षय उपशम से भी होता है, परंतु यहाँ क्षय की यानी वो कर्मों का पूरा क्षय हो गया, क्षय सम्यक दर्शन। और चारित्र मोह के क्षय से उक्षायिक चारित्र ने परिपूर्ण चारित्र शुद्धि को प्राप्त किया है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूप मूल और उत्तर प्रकृतियों के क्षय के अनंतर ही, यानी सभी ज्ञानावरण के सभी प्रकृतियों का, दर्शनावरण के सभी प्रकृतियों का पूर्ण क्षय होने पर ही, जिसकी क्षायिक अनंत केवल ज्ञान और क्षायिक अनंत केवल दर्शन पर्याय वृद्धि को प्राप्त हुई है, यानी प्रकट हुई है, तथा अंतराय कर्म के क्षय से, चारों घाती कर्मों के क्षय से क्या क्या प्रकट होता है उसकी बात यहाँ चल। अनंत वीर्य, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग और अनंत उपभोग रूप नौ केवल लब्धियों रूप से परिणत हुआ है। वह कृतार्थता की परम काष्ठा को प्राप्त हुआ, परम काष्ठा को प्राप्त हुए यानी सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। कृतार्थ कहो, कृतकृत्य कहो, ऐसे जो अरहत परमेष्ठी स्वयंभू, अभी उनके लिए क्या क्या नाम आते हैं देखो, जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी। सर्वज्ञ तो केवल ज्ञानी है, इसलिए सर्वज्ञ का, सर्वदर्शी का अर्थ क्या है? केवल दर्शन वाले। हाँ, बहुत अच्छा। और संयोग केवली इस रूप से कहा जाता है, यही उन्हीं के अलग अलग नाम है। यहाँ जिनादि रूप शब्दों की पदार्थ व्याख्या सुगम है। पदार्थ का अर्थ होता है पद यानी शब्द, वर्ड, और उसका अर्थ यानी मीनिंग, तो शब्दशाह अर्थ जिसको कहेंगे हम। तो जिनादि रूप ऊपर जो ये शब्द आए हैं यानी शब्द का अर्थ, शब्दार्थ जिसको हम कहेंगे, पदार्थ कहते ना यानी शब्दार्थ, नहीं तो पदार्थ यानी वो हमें कोई चीज, उस अर्थ में नहीं है। शब्द को पद भी कहते हैं, इसलिए शब्दार्थ उसका अर्थ है। शब्दार्थ व्याख्या सुगम है यानी ये शब्द कैसे तैयार की हुआ है उस अर्थ, उसके अकॉर्डिंगली उसका अर्थ बताए तो सहज सरल है। इसलिए उनका पुनः विस्तार नहीं करते। एक बार बता चुके हैं स्वयंभू, अगर स्वयं ही हो गए ना तो स्वयंभू कहते हैं। यहाँ पर सहयोगी केवली के स्वरूप के निरूपण करने में दो गाथाएं हैं, केवल नान निवायर किरण कलावपणासे अन्नानो नव केवल लद्दुगम सुजनीय परम पववशेषो असहायनान दंसन सहयो इदि केवली हुजोगेन जुक्तोत्तिसजोगो इदि अनायिनि हणारिसे उत्तो उत्तो इन उक्त बताया है किसमें अनाय निहण अनादि निधन क्या अरिसे आर्ष आर्ष यानी जो ऋषि की परंपरा है आर्ष कहते हैं उसको। देखो जिसने अभी इसका अर्थ देखे केवल नान दिवायर केवल ज्ञान रूपी दिवाकर, ये दिवाकर किसको कहते मालूम गुजराती में भी कहते हो दिवाकर सूर्य को कहते ये सूर्य के लिए अलग अलग शब्द है ना दिवाकर भास्कर अर्ची अर्ची मालिनी ये हम सीखते थे स्कूल में। हाँ हाँ बोलो बोलो दिनेश तो जिसने केवल ज्ञान रूपी दिवाकर की किरण कलाप के द्वारा, किरण समझते हैं ना रेज और कलाप यानी समूह का किरणों का समूह, उसके द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है तथा यानी उनके केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तभी जो शोक्षम ज्ञान अभी नहीं रहा परिपूर्ण केवल ज्ञान हो गया है। नौ केवल लब्धियों की उत्पत्ति होने से, अभी हमने नौ केवल लब्धि देखी योग शायिक जो उसके जो भाव है, जिसने परमात्म संज्ञा को प्राप्त कर लिया इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं, वह असहाय ज्ञान दर्शन से सहित होता है। यानी अभी ये जो ज्ञान दर्शन जो है जैसे छद्मस्थों के जो वहां इंद्रियों का निमित्त बनता है प्रकाश का निमित्त बनता है अन्य अन्य चीजें, वैसे वहां कुछ नहीं रहा। हमने देखा सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती, यहाँ कौन से शब्द आए थे सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट है ना शायद 131 पेज पर है सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट। हाँ तो उनके लिए इसलिए उसको असहाय कहा, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए तो भी जान सकते हैं सूक्ष्म है तो भी जान सकते हैं, भूतकाल भविष्य काल को भी, कितने भूतकाल पहले तो कितने अनंत काल, उसके कोई लिमिट नहीं सब कुछ जान लेते हैं। तो इसलिए उनके कहते असहाय ज्ञान दर्शन से सहित होता है इसलिए केवली कहा जाता है तथा यानी केवल ज्ञान केवली योग सहित होने से सहयोगी कहलाता है। तो सहयोगी कहने से कोई अयोगी भी है ये बात सिद्ध होती नहीं, अरिहंत भगवान सहयोगी भी और अयोगी भी, जिनके योग नहीं रहता वो अयोगी हो जाते हैं। ऐसा अनादि अनिधन, अनादि निधन शब्द कैसे तैयार हुआ अनादि अनिधन, ये अकॉमन है ना उसको बाहर निकाल कर हम अनादि निधन कहते हैं। तो अनादि निधन अनादि अनिधन आर्ष में कहा गया है। जो यहाँ दूसरी आशंका की जाती है आर्ष परंपरा ने जो भगवान की जो परंपरा है उसको आर्ष परंपरा कहते, ये ऋषि से आर्ष शब्द तैयार हुआ ना ऋषि परंपरा आर्ष परंपरा सर्वज्ञ की जो चली आई है परंपरा उसमें। जो यहाँ कोई प्रश्न पूछा जो यहाँ दूसरी आशंका की जाती है कि कोई पुरुष विशेष सर्वज्ञ वितरागी वितराग नहीं है, कोई कहते ना सर्वज्ञ होते ही नहीं, ऐसा कहने वाले के लिए ये बात चल रही, क्योंकि सभी पुरुष रागादि अविद्या से उपद्रुत स्वभाव वाले हैं, यानी सभी में राग द्वेष पाए ही जाते हैं इसलिए कोई वितराग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रागी है उसको वितरागी की कल्पना भी नहीं हो सकती है। रथ्या पुरुष के समान
ये रथ्या पुरुष क्या होता है पता नहीं है। अच्छा अच्छा, रथ्या पुरुष के समान इत्यादि रूप से जिनका हृदय मिथ्या दर्शन से आकुलित किया गया है, यानी जो मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने और दूसरों के वैरी अनाप्त हैं, उनके द्वारा यह बात आदर पूर्वक कही जाती है, किंतु वह बात भी शास्त्र आदि में भी अच्छी तरह से खंडित कर दी गई है, इसलिए उसका यहाँ पुनः उपन्यास नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं?
जो ऐसा मानने वाले हैं, मिथ्या मति है, अन्य मति जो है, भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे कोई होते ही नहीं कहने वाले, तो उनका खंडन बहुत से शास्त्रों में किया हुआ है, इसलिए अभी यहाँ दोबारा उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिनागम तो ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि से और अन्य मत के खंडन से भरे हुए है। ये न्याय शास्त्र जो है,
जो अपने और दूसरों के वही है, दूसरों के वही तो ठीक है, अपने भी वही है, क्योंकि उन्होंने
उसको अनाप्त कहा। आप्त कैसे है? आप्त किसको कहते हैं? अरिहंत भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को, जो उपदेश देते उनको आप्त कहा है। और अनाप्त कौन है? जो अन्य जो है वो है, सच्चे है ही नहीं है, वो कैसे अपने भी वैरी और दूसरों के भी वैरी है, यानी अपना अकल्याण कर ही रहे है, उपदेश देकर अन्य का भी अकल्याण कर रहे, यानी ये कैसे है सब जीव ऐसा कहने वाले? एक तो मिथ्या दर्शन से आकुलित हुआ है चित्त उनका, और कैसे अपने भी वैरी है दूसरों के भी वैरी है, क्योंकि खोटी प्ररूपणा करके खोटा उपदेश भी दे रहे हैं। तो कहते वे जो ऐसे जीव है वो आदर पूर्वक ऐसी बातों का कथन करते, क्या करते है? ऐसे कोई वितरागी सर्वज्ञ होता ही नहीं है, परंतु यह बात, यह कथन शास्त्रों में बहुत बार खंडित कर चुकी है, अच्छी तरह से खंडित कर दी है, इसलिए यहाँ उसका पुनः उपन्यास नहीं, फिर दोबारा उसकी चर्चा यहाँ नहीं करते। अतः क्योंकि यहाँ वो विषय नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि ऐसे एक एक वाक्य पर तो पूरे कितने वॉल्यूम लिखे गए। अतः इस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के निश्चय व्यवहार रूप अपायातिशय के अनंतर अपाय अतिशय, ये अपाय नाम सुन रहे हैं क्या? हाँ
हाँ,
शुक्ल ध्यान में नहीं, धर्म ध्यान के भेदों में विपाक विचय और अपाय विचय। अपाय विचय का अर्थ होते हैं कर्मों का नाश। तो कहते निश्चय व्यवहार रूप अपाय अतिशय के अनंतर, यानी उसका नाश क्षय होने के पश्चात प्राप्त हुए अचिंत्य ज्ञान। अचिंत्य यानी जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, कहते अचिंत्य शक्ति स्वयं वो बात आती है ना, तो अचिंत्य ज्ञान दर्शन रूप साम्राज्य की प्राप्ति की अतिशय की परम काष्ठा को आत्मसात करके, यानी वो तो सर्वोत्कृष्ट ऐसे प्राप्त हुए जिसको कि अनंत 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 वो परिपूर्ण सामर्थ्य पर्याय में प्रकट हो गई है, आत्मसात करके ने प्रकट करके, जिसने यमकृत छलना के दूर किए जाने से, यानी वो मरण को दूर किए ना, यमकृत छलना के दूर किए जाने से वही अर्थ निकलता है ना, अकृतिक
छल किए
हाँ ऊपर क्या लिखा है, कृतांत कृत निकृति मकृति काम। ओह क्या बात है, ये कैसे उन्होंने, देखो देखो ऊपर का जरा प्राकृत में क्या शब्द, एक दो तीन चार पांचवी लाइन परम काष्ठम आत्मसात कृत्य, ये तो हो गया ना, अभी कृत्य कृत्य शब्द कितना हुआ है, देखो आत्मसात कृत्य ने आत्मसात करके कृत कृत्यताम अपाकृत कृतांत कृत निकृतिम अकृतिकाम। ये बुद्धि की चमक दिखाते, एक एक शब्द पर उन्होंने इसे जोड़ जोड़ कर अलग अलग अर्थों में क्या कहते हैं उसका अर्थ हम लिखते हैं नीचे। कृतांत ने मरण, कृतांत कहो यम कहो एक ही बात है, तो कृतांत कृत, कृतांत ने क्या किया है, छलना है उसका जो कार्य है निकृति दूर किए जाने से, अकृतिका मैंने उसको दूर करके, अकृतिक अकृति के ने नहीं नहीं अकृति के ने किसी ने कराया नहीं है, तो कृतकृत्यता को स्वाधीन करते हुए अकृति के ने हम कहते ना वो तो अकृत्रिम, वैसे अकृतिक कृतकृत्यता को स्वाधीन करते हुए देवेंद्र असुरेंद्र और चक्रवर्तियों और गणधरों के द्वारा अभिगमनीय होने से फॉलो होने, जिसने पूजातिशय रूप बाह्य विभूति को प्राप्त किया है, यानी पूरे त्रिलोक के द्वारा वो परिपूर्ण पूज्य अधिगमनीय ने यानी सभी उनके जो फॉलोअर्स है
ये सारों के द्वारा जो उनको फॉलो करते हैं सारे उनको फॉलो करते हैं
यानी ये वंदनीय इनके सबके द्वारा। देखो कौन कौन, ये देवेंद्र, देवेंद्र ने देवों के इंद्र जो हम कहते हैं ना ऊपर वैमानिक देवों के इंद्रों को देवेंद्र कहते हैं, असुरेंद्र ये जो असुर कुमार आदि जो है भुवनवासी है उसके इंद्रों को कहेंगे असुरेंद्र, चक्रवर्ती वो तो मनुष्यों के जो राजा है चक्रवर्ती, और गणधर मुनियों में जो श्रेष्ठ वो गणधर है, इनके द्वारा अभिगमनीय होने से ये अभिगमनीय उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो इन सभी के द्वारा वो पूजा को प्राप्त होते हैं, इसलिए बाह्य विभूति को प्राप्त किया है। ऐसे जिनदेव संयोग केवली होकर स्वयं संपन्न प्रयोजन होते हुए भी, यानी उनका प्रयोजन अभी सफल हुआ है, संपन्न हुआ है, फुलफिल हुआ है, भगवान अरहत परमेष्ठी उनका तो करने जैसा कार्य हो गया ना, तो क्या है भगवान अरहत परमेष्ठी परार्थ प्रवृत्ति रूप स्वभाव वाले होने से ये स्वार्थ और परार्थ का अर्थ मैंने आपको परमार्थ वचनिका में से सुना है, इसमें से अर्थ प्रकाशिका में से सुनाया था। स्वार्थ किसको कहा था और परार्थ किसको कहते याद है, ज्ञान को कहते स्वार्थ और परार्थ कहते वचन को, जो वचनात्मक होते हैं उसको परार्थ कहते हैं। तो यह परार्थ प्रवृत्ति रूप स्वभाव वाले यानी उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है ना, वचन रूप प्रवृत्ति होती है उनकी, प्रवृत्ति होती है उनके, वचन योग भी है और उनके वचन निकलते भी है। उसके कारण आसन्न भव्य जीवों के हित के लिए, ये आसन्न क्या होता है, आसन्न यानी निकट, निकट भव्य, निकट भव्य क्यों, क्या कोई भव्य ऐसे भी है बहुत लंबे काल तक उसको, तो अभी तो एकदम अभव्य जैसे मिथ्या दृष्टि में तीव्र मिथ्या दृष्टि उसकी बात नहीं, निकट भव्य जो है जीवों के हित के लिए धर्मामृत वृष्टि का प्रवर्तन करते हुए, धर्म रूपी अमृत यानी ये जो उपदेश देते हैं जैसे अमृत की वर्षा कर रहे प्रवर्तन करते हुए, अबुद्धिपूर्वक ही यानी बिना इच्छा के, यहाँ अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है, इच्छा रहित, सर्वत्र वो अबुद्धि ने उनके ख्याल में नहीं आता ऐसी बात नहीं है, वो तो हम हाँ कहीं कहीं इस अर्थ में भी आता है शब्द अबुद्धिपूर्वक, समस्त प्राणियों के सब प्रकार के उद्धार की भावना के अतिशय से सभी प्राणियों का उद्धार होता है। अरे वो तो भव्यों का ही उद्धार होगा ना, सभी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, हाँ बोलो अश्विन भाई, सभी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, जो सुनेंगे उनका उद्धार होगा,
पालन
तो जो उपदेश देते हैं अभी जो जीव समाज बताए इतने अनंत जीव कहाँ रहते हैं अभी उसके तो श्रावक के आचार और मुनियों के बताए तो उनमें इन सभी जीवों का कल्याण होता है कि नहीं होता। आपको यदि पता ही नहीं कहाँ कौन से जीव होते हैं और हमारे ऐसे आचरण से उनकी हिंसा होती है तो आप तो ऐसे ही स्वच्छंद रीति से अपना आचरण करोगे। तो हमें इनके द्वारा ये पता चला कि यहाँ यहाँ इतने अनंत इतने असंख्या जो कुछ है जीव रहते हैं तो हम सावधानी पूर्वक आचरण करते हैं। तो इसमें तो समस्त प्राणियों के सब प्रकार के उद्धार की भावना के अतिशय से प्रेरित होते हुए भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से शेष अघाती कर्मों के फल की अपेक्षा विहारातिशय का अनुभव करते। क्या क्या बातें बताइए, क्या कहा? कहते कि भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से भगवान का विहार होता है और उनका उपदेश होता है तो ये हमारा पुण्य के निमित्त से उनका हाँ उनके भी वहाँ वचन योग है। यहाँ आते हैं ना स्तुति, भगवान की स्तुति अरिहंत की, उसमें आते भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग के निमित्त से ये दिव्य ध्वनि कीर्ति। तो हाँ सामने वाले जीवों के पुण्य को निमित्त रूप से वहां लिया तो विहार अतिशय ने उनका तो विहार भी होता रहता है। वो भी ऐसा नहीं कि आज मुझे इधर जाना है मुझे प्लान करके इधर ऐसे सहज रूप से उसमें निमित्त कौन लिया है शेष आघाती कर्मों के फल रूप से। इसको कहा ना उनकी ये क्रिया उसका नाम है औदयी की क्रिया। आघाती कर्मों के उदय में उनका विहार होना उनकी वाणी निकलना ये बातें सहज होती है, कोई वहां तो इच्छा की तो बात है ही नहीं है। इस प्रकार इस तथ्य के प्रतिपादन करने की इच्छा से युक्त आचार्य वर्य क्या हुआ आचार्य वर्य ने वो तो आचार्य वर्य सिंगल वर्य चाहिए परंतु तो आचार्य वर्य का अर्थ क्या श्रेष्ठ आचार्य क्योंकि सूत्रकार आचार्य को यहाँ आचार्य वर्य का आपने शायद सुना होगा गुरुवर्य भी कहते गुरुवर या गुरुवर्य 136 पेज पर आ गए अभी। यानी अभी जो यहाँ सूत्र बताने जा रहे हैं कौन से आचार्य ये जिन्होंने सूत्र लिखे हैं यति ऋषिवाच कहते असंख्येज्य गुणाए सेढ़िये पदे सगम निज्जरे मानो विहरदिति भगवान अरहत परमेष्ठी देव असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से प्रदेश पुंज की निर्जरा करते हुए विहार करते हैं। प्रति समय असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से नहीं पंक्ति रूप से जितनी एक समय में होती है दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना तो असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों को ये भगवान ढूंढते हुए निर्धुनवन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए यथा योग्य धर्म क्षेत्र में देवों और असुरों से अनुगत होते हुए यानी देव और असुर आदि जो है उनके पीछे पीछे चले जाते उनसे अनुगत होते हुए बड़ी भारी विभूति के साथ यानी उनका वो सब जो कोई विभूति है उनके साथ वो तो चलते हैं ना तो उनके नीचे वो सुवर्ण के कमलों की रचना होती है आपने वो सारे देखे होंगे धर्मचक्र आगे चलता है वो सब धुंधी भी वगैरह होती है जो उनका पूरा ही अतिशय चलता है वहां तो बड़ी भारी विभूति के साथ प्रशस्त विहायोगति के निमित्त से ये कर्मों के उदय निमित्त रूप ले लिया प्रशस्त विहायोगति है उनकी या विहार करने रूप स्वभाव वाले होने से विहार करते हैं यानी वो अयंत अवस्था ऐसी होती कि वहां सहज रूप से विहार होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। आपको याद होगा शायद प्रवचन सार में उसको उपमा दी है जैसे स्त्री के मायाचारी सहज होती है वैसे भगवान को यह विहार सहज होता है। इसका उदय की क्रिया कहे थे उनके। शंका, कदाचित यह मत हो कि इन अरहंत परमेष्टि भगवान का व्यापार अतिशय और उपदेश रूप अतिशय अभिप्राय पूर्वक ही हो सकता है, अन्यथा यत्किंचित करने रूप दोष का अनुषंग प्राप्त होता है, और ऐसा मानने पर इच्छा सहित होने से ये भगवान असर्वज्ञ ही प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा स्वीकार करना अनिष्ट ही है। ये दोनों तरह से बोलते हैं। यानी उनका ये अभिप्राय पूर्वक अगर मानेंगे तो राग हुआ, और राग होने से वो सर्वज्ञ नहीं हुए, तो जो रागे वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभिप्राय से रहित होने पर भी कल्प वृक्ष के समान इन भगवान के पदार्थ के संपादन की सामर्थ्य बन जाते हैं। कल्प वृक्ष ऐसे बिना इच्छा के वो पदार्थ देते हैं, तो कहते इनका भी ये जो उपदेश है, विहार है, ये सब सहज रूप से हो जाता है बिना अभिप्राय के। अथवा प्रदीप के समान इन भगवान की वह सामर्थ्य बन जाती है, क्योंकि दीपक नियम से कृपालुपने से अपने और पर के अंधकार का निवारण नहीं करता, किंतु स्वभाव वाला होने के कारण, क्या कहते हैं, ये जो दीपक है, आप ये जो लाइट जलाते हैं, वो कितना दयालु होनी चाहिए ना, देखो वो प्रकाश करता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, तो अपने को भी प्रकाशित करता है और सभी पूरे रूम में सबको प्रकाशित है, तो कहते वो उसका स्वभाव, उसमें कोई दयालुपना नहीं है। किंतु उस स्वभाव वाला होने के कारण ही वह अपने और पर के अंधकार का निवारण करता है, जैसा कहा है। ये ऊपर जो श्लोक उन्होंने बताए हैं उसको पढ़ेंगे हम, एक एक पढ़कर उसका अर्थ करेंगे, चार चार लाइन वाला है ना। कैसे आ गए पता नहीं, जगते त्वया हितमवादि न च विवदिशा जगद्गुरु कल्पतुर्नभिसन्धिरपि प्रणयेभ्य ईप्सित फलानि यच्छति। अब इसका अर्थ देखते हैं। हे जगद्गुरु, जगत के गुरु, त्रिलोक के द्वारा पूज्य है तो परम गुरु भी कहते हैं इनको, तो हे जगत गुरु, आपने जगत के लिए जो हित का उपदेश दिया है वह कहने की इच्छा के बिना ही दिया है। यानी मैं उपदेश दूं ऐसी इच्छा नहीं है वहां, क्योंकि ऐसा नियम है कि कल्प वृक्ष बिना इच्छा के ही प्रेमी जनों को इच्छित फल देता है, प्रणयम इप्सित फलानि यच्छति, यच्छति नहीं ददाति, देता है। अब आगे वाला, काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो नाभवं स्तव मुनिश्चिकेशया न समीक्ष भवता प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यमीहितम्। हे मुने, मने हुए हे मुने, मुंह दिख नहीं रहा है, हे मुने यानी मुनिराज को संबोधन करते, आपकी शरीर वचन और मन की प्रवृत्तियां बिना इच्छा के ही होती है। ये कौन से मुनि के लिए, जिनेन्द्र भगवान के लिए बताए, सेकंड लाइन में लिखा है ना मुने हे, तो जिसको यहाँ जगत गुरु कहा उनको यहाँ मुने कहकर, यानी हे मुनिराज ऐसा कहते हैं। काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो, आपकी शरीर वचन और मन की प्रवृत्तियां बिना इच्छा के ही होती है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आपकी मन वचन और काय संबंधी प्रवृत्तियां बिना समीक्षा किए होती है।
हे धीर, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य है। यानी चाहे जैसी स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं है, समीक्षा का अर्थ, समीक्षा करना है ना, परीक्षा करना का अर्थ होता है ना, यानी सही ढंग से ही होती है वो, नहीं तो आप कहेंगे तो बिना इच्छा के बिना होती है, तो हम भी नींद में हाथ पैर किसी के हिलते हैं तो बिना इच्छा के होते हैं, ऐसा नहीं चलना है। या कोई रोग हो जाता है तो बिना इच्छा के, पार्किंसन हो तो बिना इच्छा के हमारे पैर हाथ पैर ऐसे ऐसे हो जाए, दूर रहे थे, उसकी बात नहीं है। आपकी चेष्टाएं अचिंत्य, चेष्टा ने उनके जो कुछ क्रियाएं हैं वो अचिंत्य है, यानी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे का श्लोक देखिए, विवक्षा सन्निधाने प्रावृत्तिर्जातु नेक्षते वांछन्तो वानवक्तार शास्त्राणां मंदबुद्धय। कहने की इच्छा का सन्निधान होने पर ही वचन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। हाँ, पेज नंबर 137, ही के बदले भी चाहिए। पर ही ने पर भी है ना, कहने की इच्छा का सन्निधान होने पर भी, सन्निधान ने इच्छा होने पर भी वचन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि यह हम स्पष्ट देखते हैं कि मंद बुद्धि जन इच्छा रखते हुए भी शास्त्रों के वक्ता नहीं हो पाते इत्यादि। क्या कहने चाहते हैं कि इच्छा होने पर ही बोल सकता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना इच्छा है बहुत, यहाँ तो उन्होंने शास्त्र के वक्ता नहीं हो सकते। हम तो देखते बहुत, हम कहीं जा रहे थे और किसी ने चाकू दिखाया हमको, बोलने की इच्छा, चिल्लाने की इच्छा बहुत है, फिर भी शब्द नहीं निकल रहे। तो यहाँ कहते कि मंद बुद्धि इच्छा तो रखते हैं बहुत, फिर भी शास्त्रों के वक्ता नहीं हो पाते इत्यादि। इसलिए अब इसके द्वारा क्या घटित करते हैं, ये तो भगवान के विहार होता और उपदेश होता है बिना इच्छा के, उसकी बात चल रही थी। परम उपेक्षा लक्षण रूप संयम की, ये उपेक्षा लक्षण यानी जो वितरागता है ना, साम्य भाव, किसी के प्रति ना राग ना द्वेष, पूर्ण वितरागता, उसको परम उपेक्षा संयम कहेंगे। क्योंकि अरिहंत भगवान ने इसे परम उपेक्षा संयम शब्द लगाया, वैसे भी छठा सातवां गुण स्थान है वहां पर भी ये उपेक्षा संयम शब्द आता है। विशुद्धि को धारण करने वाले इन भगवान का बोलना और चलने रूप व्यापार आदि अतिशय विशेष, ये उसको अतिशय कहा उनका, ये उनके तो खासियत है, चमत्कार है, स्वाभाविक होने से पुण्यबंध के कारण ही। पुण्यबंध कब होता, यदि राग से होता तो ये स्वाभाविक है, जिसको उदय की भी कहा है, जैसे विहार गति का उदय बताया, अन्य अन्य उदय बताया, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। जैसा कि आर्ष में कहा है, आर्ष ने यहाँ आगम में कहा, ऐसा ले लेना उसमें। तीर्थय रस विहारो लोयसु होने वतस पुण्य फलो वयनम च दान पूजा रंभय रम तम न ले वे। तीर्थंकर परमेष्ठी का विहार लोक को सुख देने वाला है, लोयसु हो, परंतु उसका वह कार्य पुण्य फल वाला नहीं है। पुण्य फल वाला नहीं, 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 पुण्य का बंध नहीं होता उससे। देखो ये ऐसा अगर कहेंगे तो प्रवचन सार में तो पुण्य फला अरहंता लिखा है, अरिहंतों को पुण्य प्रकृति का उदय है ऐसा कहा है,
वो पुण्य का फल है, परंतु उसके कारण पुण्य नहीं मिलता, पुण्य फल वाला नहीं है। यानी ऊपर जो लिखा है ना, पुण्य बंध का कारण नहीं है। और उनका वचन दान पूजा रूप आरंभ को करने वाला तो है, फिर भी उनको कर्मों से लिप्त नहीं करता। यानी उनके वचन में वो दान पूजा आदि का क्या उपदेश आता है, इसलिए आरंभ को करने वाला है। यानी उनके वचन से लोग इसमें जाते हैं, फिर भी उनको उसका कर्म का बंध नहीं होता। पुनः इस महात्मा का है ना, परमात्मा का, वह विहार अतिशय यानी उनके जो विहार का जो अतिशय है, उनके जो विहार होते हैं, भगवान का जो विहार होता है, वो भूमि को स्पर्श न करते हुए ही आकाश में भक्तिवश प्रेरित हुए देव समूह के द्वारा रचे गए स्वर्ण कमलों पर प्रयत्न विशेष के बिना ही अपने महात्म्य विशेषवश प्रवृत्त होता है। उसमें भी कोई उनके प्रयत्न नहीं है, बुद्धिपूर्वक कोई ऐसा है नहीं कि अभी मुझे कमल पर चलना है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि योगियों की शक्तियां अचिंत्य होती है, कहा भी है। हाँ, कमल को भी स्पर्श नहीं कर। नमस्तलम पल्लवयन्निवैत्वम् सहस्र प्रत्रांबुज गर्भचारे पादांबुज पातितमार दर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थ भूत्यै। नभस्थलम चाहिए ना, कि नमस्तलम, नभस्थल होना चाहिए, है क्या करेक्शन? आकाश तल को पल्लवित करते हुए नव करना। नभस्तलम पल्लवयन्निव त्वम सहस्र ने हजार, पत्रांबुज अंबुज ने कमल, पत्र ने उपन्न उसके जो पंखुड़िया, हजार पंखुड़ी वाले कमल अंबुज गर्भ चार ही। देखो हजार नीचे पढ़ती मैं, हजार पाखुड़ियों वाले कमलों के मध्य चलते हुए गर्भचारी, चार यानी चलना, विहार करना, उसको चार कहते, चार यानी कमल। जैसे हम कहते ना, ये सूर्य का चार क्षेत्र क्या है, यानी उसकी भ्रमण की वो कौन सा रूट से भ्रमण करते, उसको चार क्षेत्र कहते। तो ये भगवान का जो चार, ये वनचारी कहते हैं, पादचारी कहते हैं, और सलचर नभचर, ये शब्द जो है चर शब्द। तो गर्भचार यानी वो तो सहस्र पाखुड़ी के कमल के मध्य में ऐसा चलने वाले, हजार पाखुड़ी वाले कमलों के मध्य चलते हुए चरण कमलों से आकाश तल को पल्लवित करते हुए के समान। आकाश तल, हाँ, आकाश को स्पर्श करते हैं, यानी ना कमलों को स्पर्श करते हैं ना जमीन को, वहाँ के आकाश को, हाँ, प्रफुल्लित हो जाता है, पल्लवित करते हुए के समान। कर्मभूमि क्षेत्र में प्रजाजनों में मोक्ष मार्ग की समृद्धि के लिए कामदेव के दर्प का पतन करने वाले आपने विहार किया। ये कामदेव, ये तो कल्पना है ना, कि जो जीवों के जो कामरूपी भाव है उसका जो गर्व अभिमान है उसका नाश करने वाले, यानी ये तो कामदेव यानी जो कुछ जीवों की वृत्तियां हैं उसका नाश करने वाले। आपने विहार किया यानी वो परम ब्रह्मचर्य के पालक है, तो ऐसे वो जो जीव है तो कर्मभूमि क्षेत्र में विहार करते, ये भी बात यहाँ ही, कोई भूभूमि में नहीं जाते तीर्थन करना और ना ही मलेच्छखंड में जाते हैं, उनका विहार के एरिया वहां यहीं पर होती है आर्यखंड में। यहाँ पर योगी जिनके प्रथम समय से लेकर समुद्धात के अभिमुख हुए, केवली जिनके प्रथम समय तक गुणश्रेणी निक्षेप का क्रम अवस्थित एक रूप होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये जो उनका जो गुणश्रेणी का जो है वो निक्षेप का क्रम, निक्षेप यानी जो उसमें गुणश्रेणी रूप से द्रव्य दिया जाता है, तो कहते वो अवस्थित यानी एक जैसा है। जहां पर विशुद्धि बढ़ती चली जाती है वहां तो अधिक अधिक होता है, यहां तो उतना का उतना द्रव्य दिया जाएगा। क्योंकि परिणामों के प्रति समय अवस्थित रहने पर पूर्ण वितराग है ना, जब तक पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई थी, हम नवे की बात की दसवें की, तो प्रति समय विशुद्धि बढ़ती 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 चली जा रही थी। अब यहाँ तो बस टॉप मोस्ट पहुंच गए, अब स्टेडी एक जैसी है। तो ये कहते कि परिणामों के प्रति समय अवस्थित रहने पर उनके निमित्त से होने वाले प्रदेशों का अपकर्षण और गुणश्रेणी निक्षेप का आयाम, क्या कहते हैं, जितना द्रव्य हर समय अपकर्षित होता है उसका प्रमाण, और जितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से दिया जाता है उसका प्रमाण, वो सदृशपणे को छोड़कर विसदृश रूप नहीं होता। इतनी विशेषता है कि क्षीण कषाय जीव के द्वारा गुणश्रेणी के निमित्त अपकर्षित हुए द्रव्य से सहयोगी केवली जिनके द्वारा अपकर्षित होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा होता है, और वहां हुए गुणश्रेणी निक्षेप से, निक्षेप के आयाम से यहाँ के गुणश्रेणी निक्षेप का आयाम संख्यात गुणाहीन ग्रहण करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, जहां जहां असंख्यात गुणा निर्जरा होती है वहां गुणश्रेणी का आयाम है वो घटकर संख्यात्वा भाग प्रमाण हो जाता है, उसके संख्यात गुणा करता। पहले तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है कि जब जीव को पहले में पहले समय दर्शन होता है ना, प्रथम उपशम समय, तब जितनी गुणश्रेणी रूप रचना होती है निर्जरा होती है उससे पांचवें गुणस्थान वाले की असंख्यात गुणा है, उससे छठे सातवें की असंख्यात गुणा है, उससे अनंतानुबंधी की विषय, उससे दशमुनि की क्षपना, ऐसे वो सब स्थान बताए। तो गुणश्रेणी तो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है, और गुणश्रेणी का जो लंबाई है ना वो घटते चली जाती है, क्योंकि कम निषेकों में अधिक द्रव्य जाता है, कम बच्चे हो तो ज्यादा माल आता है, तो कम निषेकों में अधिक द्रव्य अपकर्षण होकर वो जाता है, तो वो तो अधिक अधिक निर्जरा यानी खिर जाता है, उसको कहते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा। इसलिए यहाँ कहा बारहवें गुणस्थान में जितना द्रव्य अपकर्षित होता था और जितने लंबे गुणश्रेणी में दिया जाता था उससे अपकर्षित होने वाला द्रव्य बढ़ गया और गुणश्रेणी का आयाम घट गया, तो गुणश्रेणी जो निर्जरा होती है वो बढ़ गई, वो असंख्यात गुणा हो गई। अब उसके लिए कारण कहते हैं, एक तो छद्मस्थ के परिणामों से केवली जिनके परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, तथा दूसरे ग्यारह गुणश्रेणी प्ररूपणा में वैसा कहा गया है। ये जो मैंने अभी बताया ना ग्यारह गुणश्रेणी प्ररूपणा, अभी जो दर्शन मोहन का उपशमक है वो सब जो ग्यारह स्थान है ऐसे, उसमें भी बारहवें गुणस्थान शिक्षण मोह से भी जिनेन्द्र भगवान के असंख्यात गुणा कह दिया है, वहां पर कहा है। इसलिए आयु कर्म को छोड़कर तीन अघाती कर्मों के कर्म प्रदेशों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निर्जरा करता हुआ यह केवली जिन उत्कृष्ट से, अभी कितने काल तक वो सहयोग केवली रहेंगे, अधिक से अधिक तो उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल तक धर्म तीर्थ को प्रवृत्त करता हुआ, यानी उनके वो तीर्थ यानी उसका विहार का काल बता रहे, यानी पहले में पहले क्या अर्लीस्ट जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तीर्थंकर हुए हैं, तो उनका विहार चलेगा ना, जब से तीर्थंकर हुए तब से विहार चलेगा। पहले तो मुनि अवस्था में कुछ काल गया होगा, तो फिर लास्ट में अयोग केवली का काल छोड़ दो, वहां तो विहार नहीं होता, उसके पहले तक उनका विहार चलेगा। तो कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण काल तक धर्म तीर्थ को प्रवृत्त करता हुआ, धर्म तीर्थ तीर्थ उपदेश को कहते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते, इसीलिए उनको तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कह दिया। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है धर्म उपदेश करना, विहार करता है यह अच्छी तरह से निरूपण किया है, यानी यहां तक उन्होंने बातें बताई। हाँ हाँ, उपकर्षण होने वाला द्रव्य उतना है, असंख्यात गुणा वो असंख्यात गुणा निक्षेप होता है, अपन वो गुण श्रेणी पहले से बनी थी, बारहवें में भी बनी थी, अब ये जो नीचे के निषेक में कम दिया जाता है ऊपर के ज्यादा, ये गुण श्रेणी रूप से तो चलता है, वैसा ही कार्य चलता है, जितने गुण श्रेणी जितने निक्षेपों में देना है उसमें गुण श्रेणी रूप से ही दिया जाता है, दूसरे समय में उतना ही दिया आया माल, वो भी उतना ही दिया, यानी वो तो बढ़ता चला जाता है, पहले उसमें आया हुआ माल है तो उसमें गुण श्रेणी जो हो यानी निर्जरा हो रही है वो असंख्यात गुणी ही होगी, ऐसा नहीं कि उदय में उतने के उतने परमाणु आ रहे, उदय में आने वाले परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाती है। हाँ माल उतना ही है, हाँ वो नहीं अभी फिक्स है, अवस्थित है, यहाँ क्या लिखा देखो, अपकर्षित होने वाला द्रव्य क्षीण कषाय की अपेक्षा असंख्यात गुणा है, वो तो बात है ना, फिर भी क्या कहा, परिणामों के अवस्थित रहने पर उनके निमित्त से होने वाला प्रदेशों का अपकर्षण और गुण श्रेणी का आयाम सदृश पने को नहीं छोड़ता, यानी वो सेम का सेम रहता है, उतना का उतना रहता है। अब हम आगे यहाँ नया अधिकार शुरू होता है, इसका नाम है क्षपणाधिकार चूलिका, क्षपणा के संबंध में जो कुछ विशेष बातें यहाँ फिर से बताएंगे। हाँ कोई यहाँ करेक्शन है ना, 248 में 139 परिसमाप्ति में, पीर समाप्ति हुआ ना, परिसमाप्ति तीसरी लाइन जो अपने हम पढ़ने जा रहे हैं ना, 315 नंबर का पॉइंट, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर तीर्थंकर केवलियों और अन्य केवलियों के जघन्य और उत्कृष्ट विहार कालों के प्रमाण का अनुगम, यानी वो प्रमाण की बात हम समझेंगे सोचेंगे, और विहार संबंधी अतिशय का तथा समोसरण विभूति का वर्णन कहकर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर सूत्र की परिसमाप्ति में, ये ऊपर जो हमने वहाँ श्लोक देखा था उसमें इति लिखा था 138 पृष्ठ पर, ये जो संस्कृत श्लोक है ना ऊपर उसमें इति लिखा था, तो कहते हैं सूत्र की परिसमाप्ति में इति शब्द का ग्रहण अपनी उक्ति के ज्ञान रूप अर्थ में जानना चाहिए, क्योंकि इतने प्ररूपणा प्रबंध के विस्तार के साथ प्ररूपित कर देने पर उससे प्रकृत अर्थाधिकार की परिसमाप्ति होती है। ये जो अर्थाधिकार बताया था क्षपणा संबंधी जो है उसका अधिकार वहां समाप्त होता है, यह अपनी उक्ति का परिच्छेद यहाँ पर विवक्षित है। इस प्रकार इतने प्ररूपणा रूप प्रबंध के द्वारा स्वस्थान संयोगी केवली विषयक प्ररूपणा विशेष को समाप्त करके अब यहीं पर चारित्र मोहनीय प्रमुख घाती कर्मों की क्षपणा विधि समाप्त तो होती है। ऐसा किए गए निश्चय पूर्वक इसी क्षपणाधिकार की चूलिका का कथन करने के लिए आगे की सूत्र गाथाओं को पढ़ते हैं। उनमें प्रथम सूत्र गाथा यह है। अब एक क्षपणा संबंधी ये जो चूलिका चलेगी यहाँ पर, तो यहाँ तो सूत्र गाथा ऊपर जो बताई है उसको हम पढ़ेंगे। अणमिच्छमिस्स सम्मम् अठन सिद्धि वेद चक्कम च कुवेदम च खवेदिदु कोहादिये च संजलने। यह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ जीव, अभी शुरू से बात में क्या क्या क्षय करके आया उसकी बात कर रहे हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, जिसको हम सम्यक प्रकृति कहते हैं उसको सम्यक मुनि भी कहते हैं, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भी कहते हैं। मध्य की अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ये आठ कषाय। नपुसक वेद, स्त्री वेद, छह नौ कषाय, पुरुष वेद और क्रोध मान माया तथा लोभ, ये चार संज्वलन कषाय, इनका क्रम से क्षय करता है। ये मोहिनी कर्मों की ही बात है केवल, बाकी क्या क्या क्षय करता है उसके बीच में बात नहीं की। तो गाथा तो चूलिका के रूप में इन्होंने बताई है ना सूत्रकार ने। हाँ, ये तो पूर्ण हुआ, अभी चूलिका है, ये नया अधिकार उसमें जोड़ा है उन्होंने, यानी उसमें उन्होंने ही अपनी ओर से गाथाएं बनाई है सूत्रकार ने। ये पहली, ये सभी बातें पूरी क्षपणा की बातें फिर से दोबारा दोहराएंगे। सपना संबंधी पूरा अर्थाधिकार है, ये चूर्णी सूत्रकार की है ना, यति ऋषभ आचार्य की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो चिन्ह भी उन्होंने वो सूत्र के बनाए हैं, फ्लावर नहीं नहीं सूत्रों के लिए लगाए। अच्छा, ओरिजिनल गाथाओं को भी लगा देते हैं, पर ये ना मूल गाथा है ना भाष्य गाथा है, ये सूत्र गाथा के रूप में बताए उन्होंने। तो यहाँ क्या कहते हैं, यह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ जीव, अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, ये हो गया था ना, क्रम से क्षय करता है। देखो, जब अनंतानुबंधी की बात आई तो चतुष्क कह गया, वो प्रत्याख्यान के लिए चतुष्क कहा, प्रत्याख्यान के लिए चतुष्क कहा, संज्वलन के लिए अलग अलग नाम क्यों लिया? हाँ, उसकी क्षपणा अलग अलग समय पर होती है, इसलिए उसके यहाँ तो सबको मिलकर संज्वलन नाम दिया, पर अनेक जगह तो संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, सब पूरा अलग अलग नाम लेते हैं, क्योंकि उसकी क्षपणा अलग अलग समय पर होती है, और बाकी जो अनंतानुबंधी एट ए टाइम चारों चले जाते हैं। यह सूत्र गाथा, देखो इसको सूत्र गाथा कहा, पहले वो आई थी उसको मूल गाथा कहा था, जो ओरिजिनल कषाय पाउडर की थी, फिर भाष्य गाथा कहा था, और यहाँ इसको सूत्र गाथा कह रहे। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की पहले कही गई ही क्षपणा की परिपाटी का सबका उपसंहार द्वारा कथन करने के लिए अवतीर्ण हुई है, यानी अभी तक जो मोहनी में जो कुछ क्षपणा हुई है वो सबका यहाँ फिर से दोबारा दोहराएंगे, इसको रिपीट करेंगे। हाँ, ऊपर के पैराग्राफ में जो शब्द आया था, चौथी लाइन में ये बात लिखी थी कि इस प्रकार इतने प्ररूपणारूप प्रबंध के द्वारा, यानी ये जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया उसके द्वारा, स्वस्थान सहयोग केवली विषय, एक होते हैं तीर्थंकर केवली और एक होते हैं स्वस्थान केवली, या जो एक होते हैं समुद्घात केवली और एक स्वस्थान, क्योंकि जो तीर्थंकर ने उनको तो सामान्य कहते हैं, स्वस्थान का अर्थ है जिन्होंने समुद्घात नहीं किया है ऐसे केवली, वो स्वस्थान केवली। हाँ यहाँ समुद्रात होने के पूर्व तक की कथन है, पहले उनका यह शब्द आया था, उन्होंने यहाँ लिखा ना 314 नंबर के पॉइंट में 138 पृष्ठ पर। यहाँ पर सहयोगी जिनके प्रथम समय से लेकर मिला ना, पहली लाइन समुद्घात के अभिमुख हुए केवली जिनके प्रथम समय तक, यानी वो समुद्घात में जो अभिमुख हुए हैं उसके पहले अंतर्मुख में जो कुछ क्रिया होती है उसको यहाँ नहीं लिया है, वहां तक उसको कहेंगे स्वस्थान केवली, वहां तक की प्ररूपना बताइए। समुद्घात में क्या होता है असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी यहाँ चर्चा नहीं की है। तो शंकाकार पूछते हैं ये शोका हुआ है शंका वह कैसे, समाधान अण ऐसा कहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क का ग्रहण करना चाहिए, उन्हें अणमिच्छमिस्स सम्मम लिखा है ना, तो अण का अर्थ है अनंतानुबंधी, क्योंकि नाम के एक दिश के निर्देश द्वारा भी नाम वाले विषय के ठीक ज्ञान की प्रसिद्धि हुई देखी जाती है, क्योंकि वो नाम का एक देश है ना पार्ट, मराठी में कहावत है ता से ताक भात, तसे ताक भात, अच्छा तसे ताक भात, या अभी आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे मैसेज आप पैसे में भेजते हो और ये ईमेल भेजते हो तो क्या क्या शॉर्ट फॉर्म होते हैं, है ना, वो पूरा तो स्पेलिंग कोई लिखता ही नहीं है, आता ही नहीं है, उसी को भी नया स्पेलिंग डिक्शनरी बनाएगी उसकी। तो यहाँ अण से अनंतानुबंधी समझना चाहिए, इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन क्रिया द्वारा पहले ही नाश करता है, क्षपना का कार्य है ना, तो पहले अनंतानुबंधी का क्षय कैसा होता है तो उसका नाश तो विसंयोजना के द्वारा होता है। विसंयोजना का अर्थ क्या है अश्विन भाई? तो अन्य कषाय रूप होकर नष्ट हो जाता है, तो क्या सभी अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण में ही टर्न करें? अच्छा छठे सातवां गुणस्थान वाला विसंयोजन करेगा तो किसमें जाएगा? हाँ जिसमें संक्रमण करना है, जिसका बंध है उसमें संक्रमित हो जाएगा। फिर भी कहेंगे क्या सामान्य से हम अन्य अप्रत्यक्षणादि रूप, यानी अन्य कषाय और नौ कषाय रूप संक्रमित होकर पूर्ण नष्ट हो जाता है, उसको कहेंगे विसंयोजन। मिच्छ ऐसा कहने पर तदनंतर यानी विसंयोजना के पश्चात दर्शन मुख की क्षपना का आरंभ कर पहले मिथ्यात्व की क्षपना करता है यह कहा गया है। अभी उसके जो क्षपना की विधि तो विस्तार से हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम दर्शन मुख की क्षपना के अधिकार में तो उसमें तीन करण परिणाम मानता है वगैरह वगैरह वो बातें सब डिटेल में वहां देखी थी, यहां तो केवल उसकी रिविजन देख रहे कहां किसका क्षय करता है। मिश्र ऐसा कहने पर उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, और सम्य ऐसा ग्रहण करने पर उसके बाद सम्यक्त्व की क्षपणा करता है यह कहा गया है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा तो वो तो उसको सम्यक प्रकृति रूप टर्न करके करता है, और सम्यक प्रकृति अपने रूप से उदय में आकर नष्ट हो जाती है। अब उसमें कहा कितने क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्थिति कांडगात अनुभाव कांडगात उसकी चर्चा तो यथा समय हुई थी। अठ ऐसा कहने पर पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के बाद ही, कौन से सात प्रकृतियां तेजल अभी किसका किसका पहले नाश करता है? अनंतानुबंधी चार, हाँ दर्शन मुनि की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तीनों दर्शन मुनि की प्रकृतियां, तो ये सात का क्षय करने के बाद ही अपने अपने स्थान में, अपने अपने स्थान में नहीं अभी नौवां गुणस्थान का कुछ काल बीत गया है तो उस काल में आठ कषायों की क्षपणा प्रारंभ कर तदनंतर क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता हुआ, एक्चुअली क्षपक श्रेणी में ही वो क्षपणा का कार्य करता है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में यानी अनियुक्ति कर्म गुणस्थान में आठ कषायों की क्षपना होती है, अंतर कर्म क्रिया के करने के बाद ही। ऊपर क्या लिखा है? आठ कषायों की क्षपना का निष्ठापन करता है। अच्छा, निष्ठापन करता है यानी वहाँ स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ निष्ठापन यानी पूर्णता हुई थी। प्रारंभ और आगे निष्ठापन। हाँ, इन्हें परिपूर्णता जहाँ हुई तब हम कहेंगे नवे में उसने क्षय कर दिया। तो क्षय कब कहेंगे? जब कार्य पूरा हुआ तब हम कहेंगे क्षय हुआ, यह कहा गया है। इस प्रकार इन्हें अंतर कर्म क्रिया करने के बाद ही आठ कषायों की क्षपना का निष्ठापन करता है, यह कहा गया है। वैसे तो हमने तो आठ कषायों की पहले क्षपना करता है फिर अंतर कर्म करता है, ऐसा हमने पढ़ा था। इस प्रकार नपुसक वेद आदि प्रकृतियों की भी क्षपना संबंधी परिपाटी, परिपाटी यानी उसका क्रम, सीक्वेंस, गाथा के अनुसार करनी चाहिए। अब आगे दूसरी सूत्र गाथा कहते हैं, यानी गाथा में जो क्रम बताए ना, पहले ये सात बताए हैं, यानी अनंतानुबंधी, अनमिच्छ मिश्र सम्मम लिखा, फिर अठ कहा यानी आठ कषाय और प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम, फिर नपुसक वेद नवसी इति क्या
दिया।
ये केवल मोहनी की बात चल रही है। यहाँ निद्रा निद्रा कहाँ?
आगे तो
मैं पहले पहले वाला पढ़ रही हूँ। नवसक फिर इति वेदक, फिर छक्का मैंने छह नुकसान, फिर पुरुष वेद चख वेदु दो कोहा दिए जो संजय और क्रोधादिक क्रोधमान माया लोक संज्वल। एक क्रम से मोहिनी की क्षपना कहाँ होती है वो बताएं। अब ये दूसरी सूत्र गाथा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले गाथा का क्रम तो हमने पहले देख लिया। अथ थीण गिद्धि कम निद्रा निद्राय पयल पयलाय अधनिरय तिरियणामा जीणा संचोहणादिसु। अब मध्य की आठ कषायों की क्षपना करने के पश्चात स्त्यान वृद्धि कर्म, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, यानी ये तीनों तो कौन से कर्म है, कौन से कर्म के भेद? दर्शन दर्शनावरण के। हाँ, तथा ये तीन तो दर्शनावरण के और नाम कर्म की तेरह, तो तेरह में कौन है? नरक गति और तिर्यंच गति नाम वाली तेरह प्रकृति। नरक गति संबंधी दो ही है, नरक गति नरक गत्यानुकूल और तिर्यंच गति की तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुकूल। फिर एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुर्द्रिय जाति, फिर स्थावर आया एक इंद्रिय के साथ, आतप उद्योग भी आ गए वहां पर और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं यहाँ पर। अपर्याप्त का नाश नहीं होता है। फिर से नहीं नहीं हो गया, नरक गति हो गया। देखो तिर्यंच तिर्यंच अनुपूर्वी, फिर एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुर्द्रिय जाति, एक इंद्रिय के साथ इसलिए स्थावर ले लेना है, आतप उद्योग भी ले लेना है, द्विंद्रिय तीनिय चतुर्द्रिय हो गई ना, सूक्ष्म सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त लेना नहीं है। आप हो गया ना तिर्यंच की तो ग्यारह ही गिनना है हमको। फिर से देखो तिर्यंच की गिन रही हूँ ग्यारह, नरक की तो दो हो गई, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुकूल। अब जाति ले लो, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुर्द्रिय, एक इंद्रिय इसलिए स्थावर को ले लो, आतप उद्योग को भी ले लो और अभी सूक्ष्म और साधारण को ले लो, ग्यारह हो गए। अपर्याप्त लेना ही नहीं, अपर्याप्त पड़ा रहता है सत्ता में। तो ये तिर्यंच दोनों मिलकर तेरह प्रकृतियां, इस प्रकार ये सोलह प्रकृतियां संक्रामक प्रस्थापक के द्वारा अंतर्मूर्त पूर्व ही सर्व संक्रमण आदि में क्षीण की जा चुकी है, यानी वो अंतरकरण के पहले ही क्षीण कर चुकी है, हो चुका है कार्य।
16
हाँ
में
वो तीन
हाँ
नरक गति की दो दो और तीन इंच गति की 11। कैसे कैसे देखो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला नरगति नरगत्यानपुरी ये पांच हुई, अभी हमको 11 गिनने केवल तीन इंच की ग्यारह अभी गिनाई थी ना, तीन इंच गति तीन इंच गत्यानपुरी एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय स्थावर आतप उद्योत सूक्ष्म और साधारण। इस दूसरी सूत्र गाथा 8 कषायों की क्षपणा के अनंतर क्षय को प्राप्त होने वाली, देखो कहीं कहीं 16 का पहले क्षय किया बताया और बाद में 8 कषायों का, कहीं कहीं पहले 8 कषायों का बाद में, दोनों ही आते हैं शास्त्र में कथा, धवला जयधवला में अंतर है ना। हाँ है ऐसा अंतर, यहाँ 8 कषायों के अनंतर बताया है। इस त्यान वृद्धि आदि 16 प्रकृतियों का नाम निर्देश करने के लिए अवतीर्ण हुई है और इसकी अर्थ प्ररूपना सुगम है क्योंकि इसकी पहले ही विभाषा कराए है, यानी अंतर करने के पहले ये दोनों कार्य हो गए, 8 कषायों की क्षपणा भी और 16 की भी, 16 ही अन्य जो कर्म है उसके। इसके आगे अंतरकरण कर लेने पर आगे है ना, यानी उसके पश्चात आगे यानी वो गुजराती वाला आगे नहीं इसके पश्चात अंतरकरण कर लेने पर मोहनी कर्म का अनुपूर्वी संक्रम इस परिपाटी से प्रवृत्त होता है, यानी क्या ये पहले उनके क्षय हो गए ना ये कर्मों का, अब कहते वहां अनुपूर्वी संक्रम शुरू होगा, अनुपूर्वी यानी विशिष्ट ऑर्डर में ही उसकी विशिष्ट रूप में ही होगा, तो ये कौन सी परिपाटी है, सिक्वेंस कौन सा है, क्रम कौन सा है उसको बताएंगे। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे 3 सूत्र गाथाओं को पढ़ते हैं, एक एक सूत्र गाथा पढ़ के हम उसका अर्थ करेंगे। सौवस्समोहनीयस आनुपूवीय संकमोहोई लोभकसाये नियमा असंकमोहोई बोतवो। आगे मोहनीय कर्म की सब प्रकृतियों का अनुपूर्वी संक्रम होता है, किंतु इन्हें भी कोई प्रकृति के बारे में बताए विशेषता, लोभ कषाय का नियम से संक्रम नहीं होता ऐसा जानना, अनुपूर्वी यानी विशिष्ट ऑर्डर में जो 9 कषाय वो क्रोध में जाएंगे, क्रोध है मान में मान है माया में माया है लोभ में, अब लोभ के लिए जाने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए कोई वहां दूसरी प्रकृति नहीं है तो लोभ तो अपने रूप से ही रहेगा, तो उसका कहते हैं नियम से असंक्रामक है। अब आगे 4 नंबर को पढ़ेंगे। संच हरिपुरी सवेदे इति वेदम नंसयम चेव सप्ते वनो कसाये नियमा कोपम संच हरि। स्त्री वेद और नपुसक वेद का नियम से पुरुष वेद में संक्रमण करता है, ऐसा नहीं कि पहले नपुसक वेद की क्षपणा होती हो तो श्रीवेद होता होगा और फिर बाद में श्रीवेद, ऐसा नहीं है क्योंकि जिसका बंध होता है उसी में संक्रमण होगा, तो नपुसक वेद भी डायरेक्ट पुरुष वेद में जाता है और स्त्री वेद भी ज्यादा डायरेक्ट पुरुष वेद में जाता है, कोई किसी के भी साथ क्यों न चढ़ा, जब श्रीवेद सही चढ़ता है तो पहले में पहले क्षपणा किसकी करेगा, नपुसक वेद की, तो वो नपुसक वेद को पुरुष वेद में संक्रमित करेगा, जब स्त्री वेद की क्षपणा शुरू होगी यानी संक्रमण का कार्य होगा तो वो स्त्री वेद को पुरुष वेद में संक्रमित करेगा। पुरुष वेद सहित भी चढ़ने वाला, पहले नपुंसक वेद का पुरुष वेद में संक्रमण होगा, फिर स्त्री वेद का पुरुष वेद, क्योंकि किसी भी वेद से चढ़ रहा हो बंद तो पुरुष वेद का ही हो रहा है। तो कहते हैं ये दो वेदों का नियम से पुरुष वेद में संक्रमण करता है तथा पुरुष वेद सहित सात नौ कषायों का नियम से क्रोध संज्वलन में संक्रमण करता है। यानी पुरुष वेद किसमें संक्रमित होता है तो संज्वलन क्रोध में, और छह नौ कषाय वो भी संज्वलन क्रोध में। कोहम संचुह इमाने मानम मायाए नियम साचुह मायम चुह लोहे पड़िलो मोसंकमोनति। वह क्षपक क्रोध संज्वलन को नियम से मान संज्वलन में संक्रांत करता है, मान संज्वलन को नियम से माया संज्वलन में संक्रांत करता है तथा माया संज्वलन को नियम से लोभ संज्वलन में संक्रांत करता है। इनका प्रतिलोम विधि से संक्रम नहीं होता, ये उल्टे क्रम से, एक होता है अनुलोम और दूसरा होता है विलोम या प्रतिलोम। यानी एक ही दिशा में उनका संक्रमण चलता है, जो अभी बताए वैसे ही। इन सूत्र गाथाओं का अर्थ ज्ञात हो जाने से इनके विषय में कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। अब इसके आगे छठी सूत्र गाथा कहते हैं। जो जम संचुहंतो नियमा बंधम हो संचुहणा बंधे नहीं दर्गे अये वा संक्रमोणति। जो जीव जिस बद्यमान प्रकृति में संक्रमण करता है उसका नियम से बंध में ही संक्रमण होता है। तथा उसका बंध से हीनतर स्थिति में भी संक्रमण करता है, किंतु बंध से अधिकतर स्थिति में संक्रमण नहीं करता। संक्रमित करता है संचुहई संचुहदी सबका अर्थ संक्रमण करता है। यानी क्या करता है, संक्रमण किसमें होता है तो बंधने वाले में संक्रमण होता है। तो बंधने वाली जो विशिष्ट स्थिति बनती है, सत्ता तो ज्यादा है और स्थिति कम बनती है और नीचे आबादा है, तो बंधने वाली स्थिति में संक्रमण होता है। पहले वाली जो कर्म जो है, जैसे पुरुष वेद का बंध हो रहा है तो जो बंध रही है स्थितियां उसमें संक्रमण होता है। एक बात, बंध से हीनतर स्थिति में भी संक्रमण करता है। आबादा का जिस जो नया बंध है उसके तो आबादा है, परंतु जहां उसकी आबादा है वहां पूर्व सत्ता के निषेध पड़े हैं तो उसमें भी संक्रमण होता है, ये बात बताना चाहते हैं। परंतु बंध से अधिकतर में नहीं होगा, जितना बंध हो रहा है सत्ता तो ज्यादा है तो बंध के ऊपर के निषेकों में संक्रमण नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। 142 पर आ गया। इस सूत्र गाथा की भी अनुपूर्वी संक्रम के अवसर पर पहले ही उत्कर्षण संक्रम और पर प्रकृति संक्रम का आश्रय करके विभाषा कर आए हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। आगे क्षपक के अनुभाग और प्रदेश विषयक बंध उदय और संक्रम के अल्पभूतों का निश्चय करने के लिए आगे तीन सूत्र गाथाओं का अवतार करते हैं। यानी वहाँ संक्रमण अनुपूर्वी संक्रमण बताया, कौन किसमें संक्रमित होता है और बंधने वाले में संक्रमित होता है उसके ऊपर के निषेकों में नहीं, ये भी बात बताई। अब सात नंबर पढ़ेंगे। बंधे न हो उदयो अहियो उदय न संक्रमो अहियो गुण से अनंत गुणा अनुभागे। बंद से उदय अधिक होता है और उदय से संक्रम अधिक होता है। ये तो प्रदेशों की बात है, हमने देखी थी प्रदेशों की अपेक्षा। इस प्रकार अनुभाग में, अनुभाग की बात बता रहे हैं, बंध से उदय ज्यादा है और उदय से संक्रम ज्यादा है। अनुभाग में गुण श्रेणी अनंत गुणी जानने योग्य है। गुण श्रेणी का अर्थ होता है गुणित प्रमाण में। जब हम निषेक रचना गुण श्रेणी की कहते वहां असंख्यात गुणा कहा था, वो प्रदेशों की संख्या है। और यहाँ अनुभाग में जो अनुभाग की बात है, वो अनुभाग अनंत गुणा रूप श्रेणी रूप से होता है। जितना बनता है उससे अनंत गुणा वाला उदय है और उदय से भी अनंत गुणा संक्रमित होता है। तो यानी अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा होता है। अब प्रदेशक की बात बताएंगे। बंधेन होइ उदयो अहियो उदयेन संक्रमो अहियो गुणश्रेणी असंख्ये च पदे संगेन बोधौ वा। बंध से उदय अधिक होता है और उदय से संक्रम अधिक होता है। इस प्रकार प्रदेश पुंज की अपेक्षा गुणश्रेणी असंख्यात गुणी जाननी चाहिए। अनुभाग की अपेक्षा कितनी बताया था? अनंत गुणी। और वही वैसा ही सेम अल्पभूत्व परंतु प्रदेश पुंज की अपेक्षा असंख्यात गुण। उदयो चानंत गुणो संपहि बंधेन होइ अनुभागे से काले उदयादो संपहि बंधो अनंत गुणो। अनुभाग के विषय में सांप्रतिक बंध से यानी वर्तमान का, सांप्रतिक बंध से सांप्रतिक उदय अनंत गुणा होता है। यानी जितने उदय रूप अनुभाग है उससे अनंत गुणा ही ऐसा बंध नया हो रहा है। तथा तदनंतर समय में होने वाले उदय से सांप्रतिक बंध अनंत गुणा होता है। यानी वर्तमान समय में क्या है, जितना बंध है उससे उदय अनंत गुणा है। यानी उदय से बंध अनंत गुणाहीन है और नेक्स्ट समय में इस बंद से नेक्स्ट समय का उदय अनंत गुणा ही है। यहाँ दूसरी ओर से बताया अनंत गुणा है कहा, यानी वर्तमान में बंद है वो उदय से अनंत गुणा ही, यानी बंद से उदय अनंत गुणा है और नेक्स्ट समय का उदय है वो इस बंद से भी अनंत गुणा होता है। इस उदय से अनंत गुणा बंद होता है। देखो फिर इसको पढ़ते, अनुभाग के विषय में सांप्रतिक बंध से सांप्रतिक उदय अनंत गुणा होता है। ये वर्तमान वाला सांप्रतिक यानी वर्तमान। तथा तदनंतर समय में होने वाले उदय से सांप्रतिक बंध अनंत गुणा होता है। यानी आगे इसके समय में होने वाला उदय अनंत गुणा हीन होता है। हम हीन की तरफ से बताते हैं, जितना वर्तमान का उदय है उससे वर्तमान का बंध अनंत गुणा हीन, जितना वर्तमान का बंध है उससे भी अनंत गुणा हीन होकर नेक्स्ट समय में उदय होगा। ये बात बताना, यानी प्रति समय उदय अनंत गुणा हीन होता चला जाता है। और किसी एक समय में कंपेयर करेंगे तो उदय से बंध अनंत गुणा हीन होता है और दूसरे समय से कंपेयर करेंगे तो वहां का उदय अनंत गुणा हीन होता है। एक ही समय में उदय से बंध अनंत गुणा हीन और नेक्स्ट समय से कंपेयर करना है तो इस बंध से उसका उदय अनंत गुणा हीन। इन तीनों सूत्र गाथाओं के अर्थ की जैसे पहले विभाषा कराए उसी प्रकार उनकी फिर भी विभाषा करनी चाहिए। अब बादर सांप्रायिक जीव के अंतिम समय में, नौवे के अंतिम समय में सब कर्मों के स्थितिबंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए दसवीं गाथा उत्तीर्ण होगी, कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम।